नमस्कार श्रोताओं, कार्यक्रम सत्य वचन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। इन दिनों हम पवित्र शास्त्र बाइबल के पुराने नियम में से उत्पत्ति नामक पुस्तक का विस्तार से अध्ययन कर रहे हैं। आशा करते हैं कि इस अध्ययन से आपको आत्मिक लाभ मिल रहा है। तो आइए आज के इस अध्ययन में हम सम्मिलित हों, लेकिन इससे पहले मन की तैयारी के लिए सुनते हैं ये मधुर संगीत रचना।
मेरा संगीत है तू, मेरा हर गीत है तू, मेरे प्यारे मसीहा, मेरा मन नीत है तू, मेरा संगीत है तू, मेरा
प्रिय मित्रों, आज के बाइबल अध्ययन कार्यक्रम में मैं आपका स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सब कुशल पूर्वक हैं और आज के अध्ययन में शामिल होने के लिए तैयार हैं। तो आइए इस कार्यक्रम को हम आरंभ करें और इसके पहले हम परमेश्वर से सहायता मांगें। हमारे जीवित और सामर्थ्य पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं आज के इस सुंदर समय के लिए जिसे आपने हमें दिया है ताकि हम आपके जीवित और सामर्थ्य वचन का अध्ययन कर सकें। हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप प्रत्येक श्रोता भाई बहन को इस अध्ययन द्वारा आशीष प्रदान करें। जो कोई भी अपने जीवन में किसी रीति से दुखी व निराश है, आज आप उसे शांति दीजिए। प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मित्रों, पिछले बाइबल अध्ययन में हम उत्पत्ति की पुस्तक उसके पहले अध्याय के पहले पद पर विचार कर रहे थे, जिसमें हमने कई विद्वानों और अनेक मतों के विचारों को भी देखा कि किस प्रकार जगत की सृष्टि हुई। बाइबल के द्वारा हमने जाना कि जगत की सृष्टि परमेश्वर ने किया है। आज हम उत्पत्ति की पुस्तक के पहले अध्याय के दूसरे पद पर विचार करेंगे, उत्पत्ति पहला अध्याय और उसका दूसरा पद, जिसमें इस प्रकार लिखा है, जिसे मैं आपके लिए पढ़ देना चाहता हूं। पृथ्वी बेडोल और वीरान थी और अतः जल की सतह पर अंधियारा था और परमेश्वर का आत्मा जल की सतह पर मंडराता था। यद्यपि इस विचार पर पिछले वर्षों में कई लोगों ने संदेह किया है और मैं सोचता हूं कि उत्पत्ति पहले अध्याय के एक और दो पद के बीच में एक महाविपत्ति घटित हुई है। जहां तक मैं देख सकता हूं, इसके कई प्रमाण मौजूद हैं और हम विशाल सृष्टि को देखने के साथ ही आरंभ करते हैं कि इसे कुछ हो गया है। जैसे कि हम सबको मालूम है कि कई वर्ष पूर्व मनुष्य चांद पर गया, लेकिन उसने कोई नई वस्तु की खोज नहीं की, परंतु उसको वहां भी बंजर भूमि ही मिला। प्रश्न है कि यह इस प्रकार से कैसे हो गया। मैं आपसे कह सकता हूं कि परमेश्वर के ब्रह्मांड में एक महाविपत्ति आया और यह विशेषकर पृथ्वी के लिए कहा गया है, क्योंकि मनुष्य पृथ्वी पर ही वास करते हैं, इसलिए इसके बारे में कहा गया है कि पृथ्वी बेडोल और वीरान थी और अतः जल की सतह पर अंधियारा था। संभवतः यह परमेश्वर की अनुपस्थिति को दर्शाता है। बेडोल और वीरान यानी सुनसान, यह एक रुचिदायक भाव है। बेडोल शब्द के लिए इब्रानी भाषा में तोहू शब्द का प्रयोग किया गया है, जिसका अर्थ है विनाश या खाली जगह, और वीरान शब्द के लिए इब्रानी भाषा में बोहु शब्द आया है, जिसका अर्थ है खालीपन। मित्रों, यहां पर यशाया भविष्यवक्ता के कथन पर ध्यान दें, जिसे हम यशाया 45 अध्याय उसके 18 पद में पाते हैं। लिखा है, क्योंकि यहोवा जिसने आकाश को सृजा वही परमेश्वर है, जिसने पृथ्वी को रचा और बनाया उसे स्थिर किया है, और निर्जन रहने के लिए नहीं परंतु बसाए जाने के लिए बनाया है। वह यूं कहता है, मैं ही परमेश्वर हूं, अन्य कोई नहीं। यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर ने पृथ्वी को वीरान रहने के लिए नहीं बनाया, और इब्रानी भाषा के शब्द तोहू, यह वही शब्द है जिसे हम उत्पत्ति की पुस्तक के पहले अध्याय के दूसरे पद में पाते हैं। परमेश्वर ने पृथ्वी को बेडोल और सुनसान नहीं बनाया। परमेश्वर ने ब्रह्मांड को सुव्यवस्थित बनाया और अव्यवस्थित नहीं बनाया। और इसी बात को यशाया नबी भी स्पष्ट करने का प्रयत्न कर रहे हैं। मित्रों, परमेश्वर ने पृथ्वी को सुनसान पड़े रहने के लिए नहीं बनाया, परंतु उसने पृथ्वी को आबाद होने के लिए अर्थात बसने के लिए बनाया। और यह परमेश्वर ही है जिसने इस पृथ्वी को विशेष तौर पर मनुष्यों के बसने के योग्य रचा है। मित्रों, वर्तमान समय में हमारे आधुनिक वैज्ञानिक एवं विद्वान अपने अध्ययन और परीक्षणों के आधार पर इस निष्कर्ष पर पहुंच चुके हैं कि पृथ्वी के अतिरिक्त या अलावा संपूर्ण ब्रह्मांड में कोई अन्य ग्रह या स्थान नहीं है जहां पर मनुष्य या अन्य जीव रहते हैं। परमेश्वर ने केवल पृथ्वी को ही मनुष्यों के रहने के लिए बनाया। मैं विश्वास करता हूं कि हमें उत्पत्ति की पुस्तक यह बता रही है कि पृथ्वी बेडोल और सुनसान बन गई थी, और यह भी चांद के जैसे निर्जन बन गया था जहां पर कोई भी निवास नहीं कर सकता। और ऐसे ही समय में परमेश्वर का आत्मा गहरे जल के ऊपर मंडराता था। मैं यह भी सोचता हूं कि संपूर्ण ब्रह्मांड इस महान विध्वंस की चपेट में आ गया। लेकिन यह विध्वंस या महाविपत्ति क्या थी? मित्रों, बाइबल इस विषय पर हमें अधिक जानकारी तो नहीं देती है, परंतु आदम के पूर्व इस पृथ्वी पर एक सृष्टि का वर्णन अवश्य करती है। और ऐसे लगता है कि यह सब कुछ प्रधान स्वर्गदूत लूसीफर के पृथ्वी पर गिराए जाने से संबंधित है, जिसे भोर का तारा के नाम से संबोधित किया जाता था, जो उपद्रव से भरकर पाप में गिर गया और परिणाम स्वरूप लूसीफर तथा उसके अनेक विद्रोही स्वर्गदूतों को पृथ्वी पर गिरा दिया गया। और यही विद्रोही स्वर्गदूत इस पृथ्वी पर भय तथा विध्वंस का कारण बना, और इन्हें आज हम शैतान व दुष्ट के नाम से पुकारते हैं। यह सब कुछ मेरा मानना है, लेकिन परमेश्वर ने हमें पूर्ण विवरण नहीं दिया है। सच्ची बात तो यह है कि परमेश्वर ने हमें उत्पत्ति की पुस्तक के पहले अध्याय में इनके विषय में बहुत थोड़ी जानकारी उपलब्ध कराई है। लेकिन यदि आप इसके बारे में अधिक जानना चाहते हैं तो आप यशाया की पुस्तक उसके 14 अध्याय और उसके 12 से 19 पद तक तथा यहेजकेल की पुस्तक उसका 28 अध्याय के 11 पद से 19 पद को अवश्य पढ़ें, जहां पर लूसीफर को भोर का तारा कहकर संबोधन किया गया है। आइए हम आगे बढ़ते हैं। उत्पत्ति की पुस्तक के पहले अध्याय के दूसरे पद में हम एक अति सुंदर बात पाते हैं, और इस पद में लिखा है कि परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। मित्रों, मंडराना शब्द का तात्पर्य मुर्गी के अंडा सेने की स्थिति से है। इसका वास्तविक अर्थ यही है, अर्थात जिस प्रकार मुर्गी अपने अंडों को व बच्चों के ऊपर बैठकर चौकसी या चिंतन करती है, परमेश्वर का आत्मा ठीक इसी प्रकार इस पृथ्वी के जल के ऊपर मंडराता था। मित्रों, मंडराना शब्द का तात्पर्य जिस प्रकार मुर्गी अपने बच्चों की चिंता करती है, उनका ध्यान रखती है, उससे है। इसका वास्तविक अर्थ यही है, अर्थात जिस प्रकार मुर्गी अपने बच्चों के ऊपर पंख फैलाकर बैठकर उनकी चौकसी या चिंतन करती है, अर्थात पृथ्वी के प्रति चौकसी व चिंतन करता था। और इसी कारण से पवित्र आत्मा यहाँ पर अपना कार्य आरंभ करता है, जिसके बारे में हम लोग आगे बार बार पाएंगे कि वह दृश्य में आता है और पुनः अर्थात दोबारा सृष्टि करता है, और हूबहु हमारे लिए भी वही करता है। मित्रों, आपको याद होगा कि जब प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर थे तो उन्होंने कहा था, मैं तुझसे सच सच कहता हूं कि जब तक कोई जल और आत्मा से न जन्मे वह परमेश्वर के राज में प्रवेश नहीं कर सकता। यूहन्ना 3 अध्याय के 5 पद में हम इसे पाते हैं। यहां पर जल परमेश्वर का वचन है, और यदि आप प्रतीक के रूप में जल की दीक्षा लेना चाहते हैं तो यह अच्छी बात है, परंतु ध्यान रहे कि यहां पर जल का तात्पर्य परमेश्वर के वचन से है और पवित्र आत्मा इसका लेखक या कर्ता है, इसलिए इस विषय का अध्ययन करना हमारे लिए अति महत्वपूर्ण है। प्रिय मित्रों, अभी तक हमने उत्पत्ति के पहले अध्याय के पहले पद में ब्रह्मांड की रचना के विषय में अध्ययन किया, और दूसरे पद में हमने ब्रह्मांड के होने वाले उथल पुथल व अन्य परिवर्तनों के विषय में अध्ययन किया। अब हम कुछ क्षणों के लिए पृथ्वी की संरचना के विषय में, पवित्र बाइबल के आधार पर विचार करेंगे और हम देखेंगे कि परमेश्वर ने किस प्रकार 6 दिन में संपूर्ण पृथ्वी तथा उस पर पाए जाने वाले सभी जीवित प्राणियों की रचना की। इसके बारे में हम उत्पत्ति की पुस्तक उसके पहले अध्याय के 3 पद से 31 पद में पढ़ते हैं। यहाँ पर बहुत सी मुख्य बातें हैं जिसकी ओर मैं आपका ध्यान केंद्रित करना चाहता हूँ, परंतु इसके पूर्व निर्गमन की पुस्तक के 20 अध्याय और उसके 11 पद को देखें। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, क्योंकि परमेश्वर ने 6 दिन में आकाश और पृथ्वी, समुद्र और जो कुछ उनमें है सबको बनाया और 7वें दिन विश्राम किया। मित्रों, इस पद पर थोड़ा ध्यान दीजिए। इस पद में कहीं भी सृष्टि या रचना के बारे में चर्चा नहीं की गई है, अर्थात परमेश्वर यहाँ पर किसी प्रकार की नई सृष्टि या रचना नहीं कर रहे हैं। इस पद में बनाया शब्द का प्रयोग किया गया है, जिसका मतलब यह हुआ कि इन 6 दिनों में परमेश्वर सृष्टि नहीं कर रहे हैं, परंतु पहले से विद्यमान पदार्थ अथवा वस्तुओं से कुछ नया बना रहे हैं। यहाँ हम देखते हैं कि परमेश्वर उन वस्तुओं का उपयोग कर रहे हैं जो पहले से ही उत्पन्न की जा चुकी है। वे कोई नई वस्तु उत्पन्न नहीं कर रहे हैं, परंतु उन्हीं को दोबारा बना रहे हैं। मित्रों, यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर उस पदार्थ या वस्तु पर कार्य कर रहे हैं जिसे उसने अरबों साल पहले उत्पन्न किया था। एक विशेष बात हम देखते हैं कि परमेश्वर ने जीवित प्राणियों को रचा और पृथ्वी पर रख दिया, और पृथ्वी पर सारी सृष्टि की देखभाल करने के लिए उसने मनुष्य की रचना की। यही वह सृष्टि है जिसमें हम रुचि रखते हैं, क्योंकि आप और मैं भी इसी सृष्टि के एक हिस्से हैं, और इसी कारण आज उत्पत्ति के लेख या पुस्तक हमारे लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है। मित्रों, आइए हम परमेश्वर के द्वारा किए गए उन 6 दिनों की सृष्टि के विषय में अध्ययन करें। सर्वप्रथम हम पहले दिन की सृष्टि के विषय में देखेंगे, जो हमें उत्पत्ति की पुस्तक उसके 1 अध्याय के 3 पद से 5 पद में मिलता है। तो आइए हम इसे पढ़ें। तब परमेश्वर ने कहा, उजियाला हो, और उजियाला हो गया। परमेश्वर ने देखा कि उजियाला अच्छा है, और परमेश्वर ने उजियाले को अंधियारे से अलग किया, और परमेश्वर ने उजियाले को दिन तथा अंधियारे को रात कहा। तब संध्या हुई, फिर सवेरा हुआ, और इस प्रकार पहला दिन हो गया। यहाँ पर ऐसा लगता है कि उस समय भी 24 घंटे का एक दिन था। मैं नहीं जानता कि आप इसमें से कैसे कुछ और प्राप्त कर सकते हैं। कृपया यहाँ पर ध्यान दीजिए, परमेश्वर ने कहा उजियाला हो, और उजियाला हो गया। इसी प्रकार से इस अध्याय में कुल 10 बार परमेश्वर के द्वारा कहे गए शब्द मिलते हैं, जैसे परमेश्वर ने कहा जल के बीच एक अंतर हो, उजियाला हो, आकाश के नीचे का जल एक स्थान पर इकट्ठा हो जाए आदि। ये सब परमेश्वर के द्वारा कहे गए शब्द हैं। किसी व्यक्ति ने इसे सृष्टि की 10 आज्ञा कहा है। मित्रों, यह ईश्वरीय 10 नियम है जिसे हम इस अध्याय में पाते हैं। परमेश्वर ने कहा उजियाला हो, यह पहली बार है कि हमें बताया गया कि परमेश्वर ने बातें की, और ये उसके पहले शब्द हैं जो उत्पत्ति की पुस्तक में लिखे गए हैं। तो आइए अब हम दूसरे दिन की सृष्टि को देखें। उत्पत्ति 1 अध्याय के 6 पद में लिखा है, उत्पत्ति 1 अध्याय के 6 पद में, फिर परमेश्वर ने कहा जल के बीच एक अंतर हो, वह जल को जल से अलग करे। परमेश्वर ने कहा जल के बीच एक अंतर हो। इब्रानी भाषा में अंतर के लिए रग्या शब्द आया है, जिसका अर्थ है वायु क्षेत्र। जल को जल से अलग करे, इसका क्या मतलब है? यहाँ पर परमेश्वर ने जल के बीच एक अंतर बना दिया और जल 2 भागों में बट गया। एक भाग का जल हमारे ऊपर और दूसरे भाग का जल हमारे नीचे है। यही इस पद के कहने का मतलब है, जिसे हम उत्पत्ति 1 अध्याय के 7 पद में पढ़ते हैं। उत्पत्ति 1 अध्याय के 7 पद में, तब परमेश्वर ने अंतर स्थापित करके अंतर के नीचे के जल को अंतर के ऊपर के जल से अलग किया, और ऐसा ही हो गया। उसने अंतर के ऊपर के जल को नीचे के जल से अलग किया। मित्रों, वर्षा ऋतु में कई कई इंच जल पृथ्वी पर गिरता है, और हम कहते हैं कि उक्त स्थान पर 2 इंच या 5 इंच वर्षा हुई है। इसका तात्पर्य है कि हमारे ऊपर का जल 2 या 5 इंच पृथ्वी पर आ गया है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि असंख्य इंच जल हमारे ऊपर हर समय रहता है। आगे हम उत्पत्ति 1:8 में पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने उस अंतर को आकाश कहा और तब संध्या हुई, फिर सवेरा हुआ, इस प्रकार दूसरा दिन हो गया और परमेश्वर ने उस अंतर को आकाश कहा। मित्रों, यह उस प्रकार का आकाश नहीं है जिस प्रकार का आकाश मैं और आप सोचते हैं। वास्तव में 3 प्रकार के आकाश का वर्णन हमें पवित्र शास्त्र में मिलता है। आकाश मंडल वह स्थान है जहां तक पंछी उड़ते हैं और यीशु मसीह इसी आकाश के बारे में कहते हैं कि आकाश के पक्षियों को देखो, वे ना बोते हैं और ना काटते हैं। यह प्रथम आकाश है जहां पक्षी पाए जाते हैं और दूसरा आकाश वह स्थान है जहां आकाश के तारागण पाए जाते हैं और तीसरा आकाश वह स्थान है जहां परमेश्वर तथा उसके स्वर्गदूत निवास करते हैं। इस प्रकार से आकाश की प्रथम परत वह है जहां वायुमंडल पाया जाता है और पक्षी हवा में उड़ते दिखलाई देते हैं। यहां पर इसी आकाश के बारे में कहा गया है। तो आइए हम तीसरे दिन की सृष्टि के विषय में देखें जो हमें उत्पत्ति 1:9-10 में मिलता है। लिखा है, फिर परमेश्वर ने कहा, आकाश के नीचे का जल एक स्थान में इकट्ठा हो जाए और सूखी भूमि दिखाई दे, और ऐसा ही हो गया। परमेश्वर ने सूखी भूमि को पृथ्वी कहा तथा जो जल इकट्ठा हुआ था उसको उसने समुद्र कहा। तब परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। इस वचन के आधार पर हम पाते हैं कि परमेश्वर ने जलों का विभाजन समानांतर रूप से किया। सर्वप्रथम ऊपर तथा नीचे के जलों को पृथक किया, इसके बाद पृथ्वी पर के जल को सूखे स्थल से पृथक किया। मित्रों, यहां पर कोई भी अवैज्ञानिक बातें नहीं है, क्योंकि विश्व के समस्त वैज्ञानिक इस बात से सहमत हैं कि पृथ्वी के सभी ऊंचे स्थलखंड तथा पर्वत शिखर किसी समय जल में डूबे हुए थे। दूसरी ओर वैज्ञानिकों का यह भी मानना है कि पृथ्वी का यह भयानक दंड परमेश्वर की ही ओर से आया है, लेकिन इसके बारे में हम लोग अधिक नहीं जानते हैं। यह नूह के समय के जल प्रलय का प्रमाण भी है और जो कुछ भी हुआ उसका वर्णन बाइबल हमें संक्षेप में देती है। परमेश्वर ने हमें इसके बारे में बहुत थोड़ी जानकारी दी है, इसलिए जो कुछ भी हम कहते हैं वह निराधार हो जाता है, परंतु उसने हमें पर्याप्त जानकारी दे दी है ताकि हम उस पर विश्वास कर सकें। मित्रों, हम यहाँ पर एक खास बात देखते हैं कि परमेश्वर ने सूखी भूमि को पृथ्वी कहा। अब प्रश्न यह उठता है कि वास्तव में परमेश्वर क्या करने की तैयारी कर रहे हैं। इस तैयारी को देखने से पता चलता है कि परमेश्वर मनुष्य को इस स्थान पर रखना चाहते हैं, वह स्थान जहां लोग निवास कर सकते हैं। यद्यपि मनुष्य जलचर या जल जंतु नहीं है जैसे कि क्रम विकास सिद्धांत के मानने वाले कहते हैं, और मनुष्य न ही कोई समुद्री पौधा है जिसके बारे में हमने पिछले अध्ययन में देखा था। कुछ लोग यह भी सोचते हैं कि हम बाल्टी में से छलक कर बाहर आ गए हैं, वे संभवतः कैसे इतना बेतुका हो सकते हैं, लेकिन यही उनकी सोच है। मित्रों, मनुष्य परमेश्वर का सबसे उत्तम सृष्टि है जिसे पृथ्वी पर रहने के लिए बनाया गया है। तो आइए हम उत्पत्ति 1:11 को पढ़ें। तो कृपया आप भी अपने बाइबल में मेरे साथ पढ़िए। फिर परमेश्वर ने कहा, पृथ्वी वनस्पति उत्पन्न करे, अर्थात पृथ्वी पर बीज वाले पौधे और अपनी अपनी जाति के अनुसार फल देने वाले वृक्ष उगे जिनके बीज उन्हीं में हैं, और ऐसा ही हो गया। यह पद हमें इस बात का संकेत देता है कि मनुष्य जल प्रलय के पहले शाकाहारी थे, इसलिए परमेश्वर ने फल देने वाले वृक्षों को उगाए ताकि मनुष्य फल और कंदमूल खाए। इस प्रकार परमेश्वर ने भांति भांति के वनस्पति उगाए जिनके बीज उन्हीं में थे। तो मित्रों, आइए हम उत्पत्ति 1:12-13 को भी पढ़ें, जहां पर लिखा है, और परमेश्वर ने वनस्पति अर्थात अपनी अपनी जाति के अनुसार बीज वाले पौधे और फलदायक वृक्ष उगे जिनमें अपनी अपनी जाति के अनुसार बीज होते हैं, और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। तब संध्या हुई, फिर सवेरा हुआ, इस प्रकार तीसरा दिन हो गया। चौथा दिन जिसमें सूरज, चंद्रमा और तारागण है, तो आइए हम उत्पत्ति 1:14 को भी पढ़ें। उत्पत्ति 1:14, फिर परमेश्वर ने कहा, दिन को रात से अलग करने के लिए आकाश के अंतर में ज्योतियां हो और वे चिन्हों, नियत समयों और दिनों तथा वर्षों के लिए हो। मित्रों, हम यहाँ पर देखते हैं कि परमेश्वर सूरज और चंद्रमा की सृष्टि इस समय नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये तो पहले से ही मौजूद हैं और परमेश्वर उन्हें सिर्फ उनकी सही जगह पर नियुक्त कर रहे हैं। अब हम और आगे बढ़ते हैं और उत्पत्ति 1:15-16 को भी देखते हैं। कृपया आप भी अपनी बाइबल मेरे साथ खोलिए और पढ़िए। वे पृथ्वी पर प्रकाश देने के लिए आकाश के अंतर में ज्योतियां ठहरे और ऐसा ही हो गया। तब परमेश्वर ने दो बड़ी ज्योतियां बनाई कि उनमें से एक बड़ी ज्योति दिन पर प्रभुता करे और छोटी ज्योति रात्रि पर प्रभुता करे, और उसने तारागण भी बनाए। परमेश्वर ने दो बड़ी ज्योतियां बनाई और दोनों को ही अपना कार्यभार लेना है। इसलिए सूरज ने, जो बड़ी ज्योति थी, दिन में प्रकाश देने की जिम्मेदारी ले ली, और उसी प्रकार चंद्रमा ने भी रात में रोशनी पहुंचाने की कार्यभार को संभाल लिया। इसके पश्चात परमेश्वर ने तारागणों को भी बनाया। असंख्य तारागणों को बनाना वास्तव में मानविक दृष्टिकोण से बहुत ही कठिन काम है, लेकिन परमेश्वर के लिए नहीं। परमेश्वर के एक महान सेवक जॉन वेस्ली ने कहा कि परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की और उसने एक बार भी आधा कोशिश नहीं किया, अर्थात एक बार के काम में ही सब कुछ ठीक होता गया। उसने रात्रि में ज्योति प्रदान करने के लिए तारागणों को भी बनाया। मित्रों, अब हम उत्पत्ति 1:17-18 को पढ़ेंगे। उत्पत्ति 1:17-18, परमेश्वर ने उन्हें आकाश के अंतर में इसलिए रखा कि वे पृथ्वी पर प्रकाश दें तथा दिन और रात्रि पर प्रभुता करें और उजियाले को अंधियारे से अलग रखें, और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। मित्रों, इस पर आपने ध्यान दिया होगा कि यहाँ पर परमेश्वर है जो अंतर कर रहे हैं कि उजियाले को अंधियारे से अलग रखें। क्या आप जानते हैं कि परमेश्वर आज भी उजियाले को अंधियारे से दूर ही रखते हैं? पूर्व काल में किसी व्यक्ति ने एक प्रश्न पूछा कि सही और गलत के बीच में क्या अंतर है। इसलिए परमेश्वर ने एक लकीर खींच दी है ताकि हम जान सकें कि सही क्या है और गलत क्या है। परमेश्वर कहते हैं कि सही क्या है, और इसके लिए उसने कुछ नियमों को हमें दिया है। परमेश्वर उजियाला को अंधियारे से अलग करते हैं, और सिर्फ इतनी ही भिन्नता सही और गलत के बीच में है। यह वही परमेश्वर है जो भिन्नता लाता है और अभी भी वह भिन्नता प्रकट करते हैं। उत्पत्ति 1:19 में हम पढ़ते हैं, तब संध्या हुई, फिर सवेरा हुआ, और इस प्रकार चौथा दिन हो गया। अब हम देखेंगे पांचवें दिन की सृष्टि के बारे में। कृपया मेरे साथ उत्पत्ति 1:20 को पढ़ें। फिर परमेश्वर ने कहा, जल झुंड के झुंड जीव जंतुओं से अत्यधिक भर जाए और पृथ्वी के ऊपर आकाश के विस्तार में पक्षी उड़े। मित्रों, हमारे पास विकास के विषय में कुछ बातें उपलब्ध हैं। इसका मतलब यह नहीं हुआ कि सभी वस्तुएं एक छोटी कोशिका से आई हैं, परंतु परमेश्वर ने प्रत्येक सृष्टि की रचना की है और प्रत्येक सृष्टि में विस्तार हुआ है। परमेश्वर ने कहा, जल जीवित प्राणियों से बहुत ही भर जाए, और अगला पद इस बात को स्पष्ट करता है, उनकी अपनी जाति के अनुसार। यहां पर जाति का अर्थ शुक्राणु से नहीं है, जैसा कि डार्विन ने इसके विषय में कहा है। आइए हम उत्पत्ति 1:21 और 22 को पढ़ें। उत्पत्ति 1:21-22 को पढ़ें। और परमेश्वर ने विशालकाय समुद्री जल जंतुओं तथा प्रत्येक जीवित और तैरने फिरने वाले जंतु की सृष्टि की, जिनकी भिन्न भिन्न जातियों से जल बहुत ही भर गया, और इसी प्रकार हर एक जाति के उड़ने वाले पक्षियों की भी सृष्टि की, और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है, और परमेश्वर ने यह कहकर आशीष दी, फूलों फलों और समुद्र के जल में भर जाओ और पृथ्वी पर पक्षी बहुत ही बढ़े। मित्रों, शायद आपको याद होगा कि हमने एक वैज्ञानिक के कथन को देखा था जिसमें उसने कहा था, यदि हमारी पाठशालाएं सृष्टि की कहानी को पढ़ाती तो संभवतः वे स्टॉक की कहानी को भी पढ़ाती। मेरा विश्वास कीजिए कि पवित्र शास्त्र बाइबल ने इस कहानी को बिल्कुल दूर कर दिया है। यदि आप इसे ध्यान से पढ़ेंगे तो पाएंगे कि इन जानवरों को सामने लाने की जरूरत थी, और यही बात मनुष्य के लिए भी सत्य साबित होती है। आप एक ठूंठ के जड़ में घबराहट नहीं देख सकते हैं, न ही स्टॉक अपने छोटे बच्चे को आगे ला सकती है। आप एक ठूंठ के जड़ में घबराहट नहीं देख सकते हैं और न ही चिंगारा अपने छोटे बच्चे को आगे ला सकती है। इसके आगे उत्पत्ति 1:23 पद में हम पढ़ते हैं, 1:23, तब संध्या हुई फिर सवेरा हुआ और इस प्रकार पांचवा दिन हो गया। मित्रों, आइए हम छठवें दिन के सृष्टि के बारे में भी पढ़ें, जो हमें उत्पत्ति 1:24-25 पद में मिलता है। उत्पत्ति 1:24-25, फिर परमेश्वर ने कहा, पृथ्वी हर एक जाति के जीवित प्राणी अर्थात घरेलू पशु, रेंगने वाले जंतु और पृथ्वी के वन पशु उसकी अपनी जाति के अनुसार उत्पन्न करे, और ऐसा ही हो गया। और परमेश्वर ने पृथ्वी के जाति जाति के वन पशुओं, जाति जाति के घरेलू पशुओं और भूमि पर रेंगने वाले जाति जाति के सब जंतुओं को बनाया, और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। मित्रों, यहाँ पर इसके अभिव्यक्ति पर ध्यान दें, जो हर एक जाति पर इसके जैविक संघ की बाद है। आज हम इस अध्ययन को यहीं पर समाप्त करते हैं और हम अगले कार्यक्रम में फिर से मिलेंगे। तब तक प्रभु आप सबके साथ हो।
प्रिय श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन। हम आशा करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम से आपको आत्मिक लाभ मिला होगा। यदि आप परमेश्वर के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं, तो हमारे पास नया नियम एवं पवित्र शास्त्र बाइबल उपलब्ध है। तो यदि आप इन्हें प्राप्त करना चाहते हैं, तो हमें इस पते पर लिखें, कार्यक्रम सत्य वचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, नई दिल्ली 110019। पता एक बार फिर सुन लीजिए, कार्यक्रम सत्य वचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, न्यू दिल्ली 110019। और हाँ श्रोताओ, याद रखें कि पत्र लिखते समय आपका नाम और पता साफ साफ लिखा होना चाहिए। इसके अलावा आप हमसे टेलीफोन के माध्यम से भी बातचीत कर सकते हैं, जिसमें हमारे काउंसलर या सलाहकार आपको सलाह देंगे। तो नोट कीजिए, हमारा मोबाइल नंबर 9958820414। याद रखें 9958820414। इसके अलावा आप हमसे ईमेल के द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in, hindittb@twr.in। और अब इसी के साथ हमारे कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।